वो चैटर बॉक्स की तरह बकबक कर रही थी। लड़के ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस पर से नजरें फेरते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया, तभी आन्या ने पीछे से आवाज़ दी, ओ अजनबी यार, कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? उसकी आवाज़ सुनकर लड़के के कदम थोड़े समय के लिए ठहरे, फिर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं कहीं भी जाऊं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसने गुस्से में ये कहा और आगे बढ़ गया। आन्या का मुंह छोटा सा हो गया, वो मुंह लटकाकर बैठ गई। अगले ही पल उसके कानों में फिर से उसी अजनबी लड़के की आवाज़ पड़ी, मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। इतना कहकर वो उस कोच के गेट की तरफ चला गया। आन्या झट से खड़ी हुई और अपने बैग को संभालते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। वो उसके लिए अजनबी ही था, पर आन्या को उसके साथ अपनेपन सा एहसास हो रहा था, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक सुकून था कि वो उसके साथ सुरक्षित है। इन एहसासों की वजह वो नहीं जानती थी और शायद जानना चाहती भी नहीं थी। वो बस इतना जानती थी कि उसके साथ उसे महफूज महसूस हो रहा था और वो उसके साथ रहना चाहती थी। उसके अलावा और किसी को वो जानती भी नहीं थी, उसे वो भी नहीं जानता था, पर दिल उस पर विश्वास कर चुका था, इसलिए वो उसके पीछे चल गई। लड़का गेट के पास खड़ा था, जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आकर उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थीं। उसके सिल्की सिल्की बाल उसके माथे पर लहरा रहे थे। अब तो वो और भी आकर्षक और तेज़ तर्रार लग रहा था। आन्या जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। उसके आने की आहट पाकर लड़के ने उसकी ओर मुड़ते हुए सवाल किया, अपना घर छोड़कर भाग रही हो? उसने सपाट लहजे में सीधे सवाल दाग दिया। उसका सवाल सुनकर आन्या की आंखें हैरानी से फैल गईं, मुंह से शब्द नहीं निकल सके। लड़के ने उसे चुप देखा तो आगे बोला, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार आगे पीछे का सोच लेना चाहिए। तुम घर छोड़ आई हो, पर जाओगी कहाँ, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अकेली लड़की हो, अडल्ट हो, इतना तो समझती होगी कि यूं ही अकेले कहीं भी निकल जाना सुरक्षित नहीं है। तुम्हें घर वापस। महफूज तो वो घर भी नहीं था जहाँ से मैं भाग कर आई हूँ। अब अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत कर भी लेता है तो मुझे इस बात का सुकून रहेगा कि गलत करने वाला अजनबी है, तो मुझे इतना दर्द नहीं होगा जितना उस घर में रहकर होता था जब मेरे परिवार के लोग ही मुझे प्रताड़ित करते थे। अगर वहां से नहीं भागती तो वे मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवा देते जो मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना देता। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें मैं सांस भी दूसरों की मर्ज़ी के हिसाब से लूँ। बचपन से यही सहती आ रही हूँ और सहने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, आज़ाद पंछी की तरह अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। पढ़ी लिखी हूँ, इतनी काबिलियत रखती हूँ कि जहाँ भी जाऊँगी अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकूँगी। किसी के रहमो करम पर जीने या एहसानों तले दबकर घुट घुट कर मर जाऊँ, इसकी नौबत नहीं आएगी। जहाँ लोगों को मेरी रत्ती भर परवाह नहीं, जिनके लिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं, उनके साथ और नहीं रह सकती मैं। तुम कहते हो अकेली लड़की बाहर में सुरक्षित नहीं, तो वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। वहाँ से नहीं भागती तो मिसेस सिन्हा पैसों के लालच में मुझे बेच देती, शादी कर लेता वो मुझसे, उसके बाद जो चाहे करता मेरे साथ और मैं कुछ नहीं कर पाती, तब कौन बचा लेता मुझे उससे? पति बनकर उसे वैसे ही मुझ पर सब अधिकार मिल जाते। मेरे खुद के पापा मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे, सबको मैं ही गलत लगती हूँ तो और क्या रास्ता बचा था मेरे पास? कर लेती उससे शादी जो मेरे जिस्म को हासिल करने के लिए ज़बरदस्ती मुझसे शादी करने के पीछे पड़ा है, मान लेती उन सब की बात और बन जाती उसके हाथों की कठपुतली जिसे वो अपने इशारों पर चलाता, मिटा देती अपने ही हाथों अपना वजूद, अपना लेती उस जिल्लत भरी ज़िंदगी को जिसमें पल पल में एक नई मौत मरती। नहीं नहीं, सह नहीं सकती मैं ये सब। ये सब याद करते हुए आन्या की आंखों में नमी तैर गई। उसने अपने आंसुओं को साफ करते हुए आगे कहा, मुझे तुम अच्छे इंसान लगे थे, पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे साथ महफूज महसूस कर रही थी इसलिए तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो ठीक है, हूँ मैं गलत और गलत ही रहना चाहती हूँ। अभी तुम ही ने कहा था ना कि हम अजनबी हैं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें भी मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी, मैं जो मर्जी करूँ, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और तुम भी मुझसे बात मत करना। अकेली आई हूं तो अपने भरोसे सब छोड़कर आई हूं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं खुद अपना ध्यान रख लूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी कलाई पर बांधा हुआ रुमाल खोलकर उसे पकड़ा दिया और बैग लेकर दूसरे कोच में चली गई। लड़का बस उसे जाते हुए देखता ही रह गया। आन्या दूसरे कोच के गेट के पास जाकर बैठ गई और नम आँखों से बाहर देखने लगी। उस लड़के पर उसको विश्वास होने लगा था। उसने जब वापस जाने का सुझाव दिया तो आन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने अपना सारा दर्द गुस्से के रूप में उस पर निकाल दिया और अब उसे खुद को बहुत बुरा लग रहा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, रोना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो पलकें झपकाते हुए बाहर देख रही थी ताकि अपने आंसुओं को बाहर आने से रोक सके। घड़ी ने 7 बजाया और ट्रेन नासिक रेलवे स्टेशन पर रुकी। आन्या अपना बैग संभालते हुए बाहर निकल गई और वहां लगी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। इतना बुरा और उदास वो तब भी महसूस नहीं कर रही थी जब घर छोड़कर आई थी, जितना अब महसूस कर रही थी। अजीब सा खालीपन था दिल में, अकेला अकेला महसूस कर रही थी। आंखों में पानी था और नजरें जमीन पर टिकी हुई थी। आसपास से लोग निकलकर जा रहे थे। धीरे धीरे ट्रेन से उतरे सभी लोग वहां से चले गए, पर आन्या वहीं बैठी रही। जाती भी कहां, यहां वो कुछ जानती ही नहीं थी, ज्यादा पैसे भी नहीं थे। वो उदासी वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी नजरें जो जमीन पर टिकी हुई थी उसके सामने एक जोड़ी काले जूते आ गए। साथ ही उसके कानों में जानी पहचानी सी आवाज पड़ी, यहां बैठकर क्या कर रही हो? अपना ध्यान खुद रखने वाली थी ना, तो जाओ। जब घर छोड़ने का फैसला ले लिया है तो जाकर नया ठिकाना ढूंढो अपने लिए, यहां बैठकर क्या कर रही हो? ये आवाज उसी लड़के की थी। उसकी बात सुनकर आन्या को अब गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से नजरें उठाकर उसे घूरते हुए कहा, मेरी मर्जी, कहीं भी जाऊं कहीं भी बैठूं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अपने काम से काम रखो और जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूं, बस तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ। लड़का दूर जाने के बजाय उसके बगल में आकर बैठ गया तो आन्या गुस्से में उठकर जाने लगी, पर लड़के ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक दिया और आराम से बोला, बैठो। मैं नहीं बैठूंगी और मैं तुम्हारा आदेश क्यों मानूं, हो कौन तुम? आन्या अब भी गुस्से में थी। लड़के ने एक ठंडी सांस छोड़ी और थोड़ा कोमल स्वर में बोला, कोई नहीं हूं मैं तुम्हारा, अजनबी हूं जिस पर विश्वास करके तुमने कुछ देर पहले अपना सारा दर्द और निराशा उस पर निकाली थी। जैसे तब विश्वास किया था वैसे ही एक बार और विश्वास करके बैठो, कुछ कहना है मुझे तुमसे। उसने इतने प्यार से कहा कि आन्या का गुस्सा पल में गायब हो गया। वो एकटक उसे देखने लगी। लड़के ने आंखों से बैठने का इशारा किया तो आन्या कुछ दूरी बनाते हुए उसके पास बैठ गई। कुछ देर वहां खामोशी फैली रही, फिर उस लड़के ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहना शुरू किया, सबसे पहले तो अगर मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का नहीं था, मैं बस तुम्हें यथार्थ बता रहा था। जो भी वजह रही हो, यूं ही जल्दबाजी में घर छोड़ने का फैसला लेना मूर्खता है। हाँ, तुम्हारे हालात ऐसे थे कि तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा, पर अब आगे क्या करोगी, कहाँ जाओगी?
पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी किसी भी हालात में रह लेता, कोई भी काम करके गुजारा कर लेता। पर तुम एक लड़की हो, जवान हो और सुंदर भी हो, यूं अकेले घर से अलग रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, ये बात तुम समझ नहीं रही हो। वैसे तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं सब जानकर भी अनजान बनकर तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, तुम्हें घर छोड़ना सही फैसला लगा तो तुमने घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई इस अनजान जगह पर, अब ना तुम्हारे पास कोई सुरक्षित जगह है जहाँ तुम रह सको, ना यहाँ कोई काम या पैसे हैं। अब तुम सोचो क्या करोगी, कहाँ जाओगी? ऐसा तो नहीं होगा कि वहां से बचकर तुम यहां आई हो और यहां आकर उसी दलदल में जाना चाहोगी जिससे बचने के लिए तुम अपना घर छोड़कर भागी हो। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम शांत दिमाग से सोचो कि क्या और कैसे करोगी आगे। अगर कोई रास्ता है तो बताओ, और अगर वापस जाने का फैसला है तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगी, लड़के के चुप रहने पर आन्या ने फौरन ही जवाब दिया तो लड़के ने उसकी ओर नजरें घुमाई। आन्या ने अब उसे देखते हुए आराम से कहा, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी, वे लोग मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं, मेरे अपने बाप को मेरे आंसू नजर नहीं आते, बिना गलती के भी मैं गुनाहगार की तरह उनकी हर सजा भुगतती हूँ, उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं, उन्हें अगर किसी से प्यार है तो अपनी पत्नी और अपने बेटे से, उन्हें सिर्फ उन्हीं की बातें सुनाई देती हैं और उन्हीं की बातों पर उन्हें विश्वास होता है, मेरा वहां कोई भी नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरा ये हाल नहीं होता, पर वो मुझे जन्म देते ही दुनिया छोड़कर चली गई, मेरे पापा ने मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार माना और कभी मुझे प्यार नहीं किया, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। मानती हूं दुनिया बहुत बुरी है, जब मेरे अपने ही मेरे नहीं हुए तो मैं किसी गैर से उम्मीद भी क्या कर सकती हूं, पर जितना मैंने तुम्हें समझा है तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ मुझे महफूज महसूस होता है। मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है, कोई जगह नहीं जहां मैं जा सकूं, कोई काम भी नहीं है, पर मैं जल्दी ही काम ढूंढ लूंगी, तुम कहीं तो रहते होगे, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, जल्दी ही कोई काम ढूंढ लूंगी, जैसे दो रूममेट एक साथ रहते हैं वैसे ही मैं भी रह लूंगी, तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी, बस मुझे अपने साथ रहने दो, मैं यहां किसी को नहीं जानती, पर जब से तुमसे मिली हूं ऐसा लगता है जैसे बहुत पहले से जानती हूं तुम्हें, जैसे कोई रिश्ता है हमारा, दिल तुम पर विश्वास करने लगा है, ऐसा पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया है मैंने, तुम अनजान होकर भी मेरे अपनों से ज्यादा करीब हो गए हो मेरे, मुझे गलत मत समझना, मैं फ्लर्ट करने वाली लड़कियों में से नहीं हूं, सच में तुम्हारे साथ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत पहले से जानती हूं तुम्हें, बहुत गहरा रिश्ता हो हमारा, तुम्हारे साथ होती हूं तो सारा डर अपने आप गायब हो जाता है, एक विश्वास रहता है कि तुम हो तो मैं सुरक्षित हूं, मुझे अपने साथ रहने दो।